ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में राज्य के पांच संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन। पटना उच्च न्यायालय ने कहा जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक में शामिल सदस्यों का बहुमत ही होगा जरूरी। और प्रदेश में मॉनसून के 10 से 12 जून के बीच दस्तक देने की संभावना, मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस चरण के तहत राज्य के पांच संसदीय क्षेत्रों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे थम जाएगा। इन क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होना है। पांचवें चरण में 95 लाख से अधिक मतदाता 6 महिला समेत 80 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 12 प्रत्याशी मधुबनी संसदीय क्षेत्र में हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में 14-14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में 9,436 बूथों की स्थापना की है। औसतन 1,008 मतदाता प्रत्येक बूथ पर मतदान करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सारण लोकसभा क्षेत्र के अमनौर स्थित धरारा खुर्द मैदान में पार्टी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सीवान लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण और शिवहर में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण लोकसभा क्षेत्रों में इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच में 138 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए, वहीं 79 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा संसदीय क्षेत्र से 29, पटना साहिब से 17, पाटलिपुत्र से 22, आरा से 14, बक्सर से 15, सासाराम से 10, काराकाट से 14 और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर अज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात नालंदा लोकसभा सीट की। नालंदा बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध नालंदा की पहचान उदार सांस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का बौद्धिक दृष्टिकोण लंबे समय तक एशिया की संस्कृति को गढ़ता रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नालंदा की विरासत काफी समृद्ध रही है। 1957 से अस्तित्व में आए इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे कई प्रमुख हस्तियों ने किया है। है। वर्ष 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से जदयू के कौशलेंद्र कुमार को लगातार जीत मिलती रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जदयू के खाते में आई नालंदा सीट से पार्टी ने एक बार फिर कौशलेंद्र कुमार को ही मैदान में उतारा है। उनके सामने विपक्षी गठबंधन के भाकपा माले ने संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। संदीप सौरभ पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 6 पर एनडीए और 1 सीट पर राजद का कब्जा है। अस्थामा, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौत सीट पर जदयू के और बिहार शरीफ सीट पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं एकमात्र सीट इस्लामपुर पर राजद का कब्जा है। कृषि प्रधान नालंदा लोकसभा क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या प्रमुख है। पैमार, गोइठवा, सोइवा और लोकायन समेत अन्य नदियों में पानी का बहाव नहीं के बराबर है, जिस कारण किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उद्योग धंधों की कमी के कारण श्रम शक्ति का पलायन क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख समस्या है। यदि उम्मीदवार अपने 15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों तथा राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं भाकपा माले उम्मीदवार महंगाई और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों के आधार पर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के 22 लाख से अधिक मतदाता चौथी बार जदयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को लोकसभा भेजते हैं या फिर एक नए चेहरे भाकपा माले के संदीप सौरभ पर भरोसा जताते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की सही ढंग से जांच नहीं की गई। उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि वे पिछले 7 वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया में जिला परिषद के कुल निर्वाचित सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश हरीश कुमार की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 10 से 12 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक सुनील कुमार थूल ने बताया कि इस बार राज्य में मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश के आसार हैं। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 43.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले में लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण नमी युक्त हवा प्रदेश के दक्षिण पूर्व भागों में प्रवेश कर रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
उत्तर पश्चिमी हवा बिहार में आ रही है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिस कारण एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है।
इधर कल मुंगेर, बांका और भागलपुर जिले में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गयी। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की है। इनमें मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के मालीघाट चौक स्थित पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 80 लाख रुपए नकद, 5 पिस्तौल और निवेश तथा जमीन के दस्तावेज सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम विजय झा के ठिकानों से बरामद कागजातों की जांच कर रही है। माता सीता के जन्मोत्सव पर आज प्रदेश भर में जानकी नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीतामढ़ी और दरभंगा समेत मिथिला के विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इधर पटना के महावीर मंदिर में माता जानकी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सारण जिले के करखा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीराजपुर स्थित एक मदरसा में हुए बम विस्फोट में घायल मौलाना इमामुद्दीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल एक छात्र का पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि बीते 15 मई को इस मदरसे में यह विस्फोट हुआ था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, कोर्ट के संज्ञान के बाद ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, गिरफ्तारी जरूरी हो तो विशेष अदालत से लेनी होगी मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन से दुष्प्रभाव का दावा। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बेटे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं लालू प्रसाद। प्रभात खबर तेजस्वी प्रसाद यादव के हवाले से लिखता है, इंडिया की सरकार 1 करोड़ लोगों को देगी नौकरी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सरकार ने सस्ती की 41 दवाएं। दैनिक आज की सुर्खी है, शिक्षा विभाग ने 3 विश्वविद्यालयों के खातों पर रोक लगाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक में शामिल सदस्यों का बहुमत ही होगा जरूरी। और प्रदेश में मॉनसून के 10 से 12 जून के बीच दस्तक देने की संभावना, मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।